बिन रोए आंसू पार्ट 14। पूरा नॉवल सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और यूनिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस वक्त पर मिली जा सके। शुक्रिया। फजर का वक्त होने में कुछ ही देर बाकी थी। वो बेड पर जागा हुआ बहुत परेशान बैठा था। उसे सबा की फिक्र तो थी ही, लेकिन इससे भी ज्यादा बाबा और डैडी की फिक्र थी। वो इन्हें इत्मीनान और सुकून देना चाहता था। सबा की जो भी प्रॉब्लम थी इसे वो खुद बिल्कुल अकेले सुलझाना चाहता था। इन्हें अब किसी मसले में उलझाना उसे गवारा नहीं था, मगर सबा का रवैया इसकी इस सोच के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे जैसे रात गुजर रही थी वैसे वैसे इसकी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। अगर सुबह उठकर बाबा और डैडी को ये बात पता चल गई कि सबा अपने कमरे में अकेली सोई थी तो वो दोनों बहुत डिस्टर्ब होंगे। इस रिश्ते से वो दोनों किस कदर खुश थे, वो इनकी खुशियों को फिक्रात की नजर नहीं करना चाहता था। अचानक ही वो कुछ सोचकर सिगरेट ऐशे में फेंकता हुआ उठ खड़ा हुआ। अपने कमरे से निकलकर वो सीधा सबा के कमरे की तरफ आ गया था। वो दरवाजा खोलकर अंदर गया और आहिस्तगी से दरवाजा वापस बंद कर दिया। वो बेड के बीचों बीच औंधे मुंह बिल्कुल साकत पड़ी थी। वो इसके पास आया और बिल्कुल आहिस्ता से आवाज दी। वो इसकी एक क्या दूसरी और तीसरी पुकार पर भी यूं ही साकत पड़ी रही। इत्तेजा को एकदम उसकी फिकर लाहक हो गई। वो बेख्तियार बेड पर बैठा और कंधे से पकड़कर उसे सीधा किया। वो सो रही थी या बेहोश थी एक नजर में उसे अंदाजा नहीं हो सका। बाबा और डैडी से हटकर अब इसकी परेशानी का रुख सबा की तरफ मुड़ गया था। वो ख्वाब में भी वही मंजर देख रही थी जो अभी चंद घंटे पहले उसने जागती आंखों से देखा था। सुर्ख लबास, गहनों और फूलों की जगह सफेद कफन ने ले ली थी। इस कमरे में अब चारों तरफ खून ही खून था। वो बहुत जोर से चिल्लाई थी। बुखार की शिद्दत की वजह से इसने आंखें नहीं खोली थी, लेकिन वो खोलना चाहती थी ताकि इस भयानक से ख्वाब से छुटकारा पा सके। इसे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। कोई बड़ी आहिस्ता आवाज में इसका नाम ले रहा था। इसके चेहरे पर किसी के बिल्कुल ठंडे हाथ रखे हुए थे। वो इसका चेहरा थपथपा रहा था, उसे जागने की कोशिश करवा रहा था। वो अपनी आंखें खोलने में कामयाब हो गई थी। आंखें खोलने पर ना उसे कोई फूल नजर आए, ना कोई दुल्हन, ना ही कोई लाश और खून। इसने बहुत इमानियत और सुकून किया। शुक्र था कि वो इस डरावने से ख्वाब से जल्द बिदार हो गई थी। कैसा महसूस कर रही हो अब तुम? बुखार तो पहले से कम है। इसने आवाज की तरफ चौंक कर देखा। वो इसके बिल्कुल करीब बैठा इसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रहा था। इसके चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमेशा हुआ करती है। ये वही था उसे अभी इसने ख्वाब में देखा था। इसने फौरन ही उसे धक्का देकर अपने पास से हटाना चाहा, मगर वो सिर्फ उसे हाथ ही लगा सकी। धक्का देने जैसी ताकत इसके जिस्म में नहीं थी। बेबसी के शदीद एहसास में घेर कर इसने आंखें बंद कर ली थी। कुछ चाहिए सबा? वो इसके हाथ लगाने पर यही समझा कि शायद उसे कुछ चाहिए। आप मेरे कमरे से चले जाएं। उसे खुशी हुई। वो कुछ और नहीं कर सकती थी, कम से कम बोल तो सकती थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें बुखार हो रहा है, उसने उसे बताना चाहा। मुझे जो भी हो रहा है आप यहाँ से चले जाएं। اس نے جواباً چلانے کی کوشش کی مگر زیادہ زور سے نہیں چلا سکی۔ اس نے اپنی آنکھیں اس طرح بند کی تھی جیسے اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ وہ ریشما تھی، وہ اس کی آواز پہچان گئی تھی۔ وہ کچھ لے کر آئی تھی، اس کے بارے میں اعتزاز سے کچھ بول رہی تھی۔ ہاں یہ ٹرے یہاں ٹیبل پر رکھ دو، اعتزاز نے اسے جواب دیا۔ ابھی شاید وہ واپس بھی نہیں گئی تھی کہ ایک دوسری آواز آئی، یہ ڈیڈی کی آواز تھی۔ ڈیڈی کی آواز سنتے ہی اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑے بہت پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ارتضیٰ انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دیتا خود اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ اس کے اٹھتے ہی وہ پرسکون ہو گئی۔ ارتضیٰ بیٹھ کے پاس ہی کھڑا انہیں اس کی طبیعت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ اس کی باتیں سنتے ہوئے سبا کو دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں اس کے لیے بہت فکر تھی۔ آپ سبا کو ناشتہ کروائیں ڈیڈی، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، وہ ڈیڈی سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ طبیعت کیوں خراب کر لی بیٹا؟ ٹرے سائی ٹیبل سے اٹھا کر بیڈ پہ رکھتے ہوئے انہوں نے اس سے پوچھا۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ وہ اب اس کے لیے سلائس پر مکھن لگا رہے تھے۔ جیم بھی لگاؤں؟ انہوں نے آہستگی سے پوچھا۔ اس نے فوراً سر ہلا دیا۔ کل دوپہر اور رات کے کھانے میں اس نے صرف چند لقمے کھائے تھے اور اب اچانک ہی اسے بے بھوک کا احساس ہوا تھا۔ اس نے دودھ کا گلاس خالی ہی کیا تھا کہ بابا بھی کمرے میں آ گئے۔ ہمیں ڈرانے اور پریشان کرنے کے اہتمام ہو رہے ہیں، انہوں نے مصنوعی خوفگی سے اسے گھورا۔ وہ کچھ شرمندہ سی ہوتی زبردستی مسکرائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا۔ ہاں کتنی ٹھیک ہو، یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے۔ وہ بھی بیڈ پر بیٹھ گئے۔ وہ دیکھ رہی تھی بابا اور ڈیڈی دونوں کے چہرے پر اس کے لیے بہت ساری فکر اور پریشانی تھی۔ وہ بظاہر اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے مگر ان کی آنکھوں سے فکر اور پریشانی جھلک رہی تھی۔ ارتضیٰ دوبارہ کمرے میں آیا تو آفس کے لیے تیار ہو کر، میں آفس جا رہا ہوں بابا، آپ لوگ تو ہیں سبا کے پاس، بابا نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ان دونوں کو خدا حافظ کہتے ہوئے اس نے اسے بھی خدا حافظ کیا۔ ڈیڈی مسلسل اس کے پاس بیٹھے رہے تھے۔ موا سکول سے آ کر سیدھا اس کے پاس آ گیا۔ اس نے اسے پیار کیا۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بہت خوش لگ رہی تھی اور ڈیڈی اسے خوش دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد اس سے لپٹ کے سو گیا تھا۔ شام تک اس کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ رات کا کھانا سب نے حسب معمول ساتھ کیا۔ وہ کھانے کی میز پر بالکل خاموش تھی، مواز کی باتوں کا بھی ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ یہ خاموشی بالکل بیزاری صرف اور صرف اس کے لیے ہے، لیکن وہ انجان بنا بابا کے ساتھ اپنی فیکٹری کے کچھ مسائل ڈسکس کرنے لگا تھا۔ کھانے کے فوراً بعد اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ڈیڈی اس کے کمرے میں آئے تھے، اسے دعا کھلا کر اور پیار کر کے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ وہ بیڈ پر خالی الزینی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولنے کی آواز پر وہ بے ساختہ چونکی۔ آپ بغیر نوک کیے میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ آپ کے پاس اتنے مینرز بھی نہیں ہیں کہ کسی کے کمرے میں؟ وہ بہت غصے سے چیخی تھی مگر ارتضیٰ نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر دروازہ واپس بند کیا اور اس کی بات کو کاٹتا ہوا بہت سکون سے بولا، تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے وہ ضرور کہو مگر آہستہ آہستہ آواز میں، تم چیخے بغیر بھی بولو گی تو میں تمہاری بات سن لوں گا اور سمجھ بھی لوں گا۔ وہ اب واپس اس کی طرف گھوم چکا تھا۔ بہت غصے میں اس نے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلایا۔ اس کا बेड पर बैठने का इरादा देखकर वो इसके बैठने से पहले वहाँ से उठ गई। सबा, क्या हम आराम से बात नहीं कर सकते? इसने बहुत संजीदगी से पूछा। इस रिश्ते से पहले भी हमारे दरमियान बहुत रिश्ते थे, लेकिन वो सब रिश्ते खत्म हो गए हैं। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम किस वजह से इतनी टेंस हो? वो बड़ी रसानियत से उससे मुखातिब था। बेड पर बैठे हुए वो बराह रास्त इसकी आंखों में देख रहा था। वो सामने खड़ी बहुत गुस्से और नफरत से उसे देख रही थी। वो सारे रिश्ते मैंने नहीं, आपने खत्म किए हैं। आपने रखा था ये प्रपोजल मामा के सामने। अगर आप ये प्रपोजल ना रखते तो मामा मुझे इस शादी के लिए मजबूर ना करती। इसके लहजे में वो तलखी, वो करवाहट थी जो इसके मिजाज का हिस्सा नहीं थी। मेरी शादी का इशू इस तरह ना उठता अगर आपने खुद को मामा के सामने पेश ना किया होता। और अगर फर्ज कर लें कि उठता भी तो मेरे लिए मामा कहीं और रिश्ता ढूंढ लेती। वो आपसे कभी इल्तिजा ना करती। मेरी जिंदगी में पैदा होने वाली सारी मुसीबतें आपकी वजह से हैं। वो तलखी से उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ सारी गलती मेरी है, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि मेरी इस गलती ने मामा को कितना सुकून दिया है। वो अपने मुंह से चाहे मुझसे ये बात ना कहती, मगर मैं जानता हूँ वो दिल से यही चाहती थी। फिर वो दिल की बात जुबान पर ना लाती और ये खलिश अपने दिल में लिए ही हम लोगों से जुदा हो जाती। तुम्हें अच्छा नहीं लगता ये सोचकर कि हमारे इस रिश्ते ने मामा को कितनी खुशी दी? उसका लहजा हमेशा से नरम और मिठास लिए हुए था। इसमें जरा सा भी गुस्सा और नाराजगी शामिल नहीं थी। वो इसकी बातों से ज्यादा इसके लहजे पर भड़की थी। ये जो आप मेरे सामने बहुत अच्छे और मीठे बनने की कोशिश करते हैं ना, इससे कोई फायदा नहीं। मेरे सामने पोलाइट, बहुत सॉफ्ट स्पोकन मत बना करें। मेरे सामने इतने अच्छे मत बना करें। मुझे आपकी अच्छाइयों से नफरत है। मेरी ये बात आप कान खोल कर सुन ले। मिस्टर इत्तेजाक गजलफर, मैंने मामा की वजह से मजबूरन इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी, लेकिन मेरा दिल इस रिश्ते को कभी तस्लीम नहीं कर सकता। मरते दम तक नहीं, जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं। इससे ज्यादा वो वाज़े अल्फाज में इनकार नहीं कर सकती थी। अब आप मेरे कमरे से जा सकते हैं। वो इस पर एक नफरत भरी निगाह डालकर अब दरवाजे की तरफ इशारा किए खड़ी थी, गोया उसे बाहर जाने का रास्ता बता रही हो। तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, हम बाद में बात कर लेंगे। वो जैसे कोई फैसला करते हुए बेड से उठा। आप मेरे साथ कभी भी बात कर लें, मेरा जवाब हमेशा यही होगा, मैं कभी भी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करूंगी। तुम्हारी अलहदगी का फैसला हमने खुशी से नहीं किया था। बस फैसले करते वक्त दिल को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी हमें ये फैसले करने पड़ते हैं। ऐसा ही फैसला वो भी था। तुमने कभी ये नहीं सोचा तो ऐसा मैंने भी कभी नहीं सोचा था। अगर मुझे इस रिश्ते में कबूल करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, तो मेरे लिए भी तुम्हें इस बदले हुए रिश्ते में कबूल करना बहुत मुश्किल है। मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा। तुम जानती हो मैं समझ से कितनी मोहब्बत करता था। इसके बाद किसी दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल करने का मेरे पास कोई तसव्वुर ही नहीं था। और दूसरी भी कोई और नहीं तुम, मगर ये एक ऐसा फैसला था जो मुझे हम सब की बेहतरी के लिए करना पड़ा। हमारे इस घर के लिए, हमारे वालदैन के लिए, उनकी खुशियों के लिए। वो इसके सामने आकर रुक गया था। एक एक लफ्ज उसने बहुत ठहर ठहर कर बोला था, यूं जैसे उस सारी सूरत हाल अच्छी तरह समझाना चाहता था। सबा के चेहरे पर मौजूद तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। इस पर इसकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ था। इस पर वही सख्ती, वही खुदरापन और वही तलखी अभी भी मौजूद थी। वो इसी तरह दरवाजे की सिमत इशारा करती इसके बाहर निकल जाने की मुंतजर थी। इत्तेजा को ऐसा लगा जैसे वो किसी पत्थर से सटकरा रहा हो। وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ارتضا کو اپنا مزید کچھ کہنا بالکل بیکار نظر آیا۔ وہ ہار ماننے والے انداز میں دروازے کی طرف چلا گیا۔ اسے کمرے سے نکلتا دیکھ کر وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ مرنا چاہتی تھی، مگر کس طرح مرے؟ وہ زندگی کے پچھلے کئی سالوں سے اپنے آپ سے نفرت کرتی آ رہی تھی، مگر اب اپنے آپ سے یہ نفرت شدید تک ہوتی جا رہی تھی۔ اسے نہ خود پر ترس آتا تھا، نہ خود سے ہمدردی ہوتی تھی، اسے بس خود سے نفرت تھی۔ نفرت، صرف اور صرف نفرت، پہلے سے بھی شدید نفرت۔ اسے یوں سب سے لا تعلقی اور بیگانگی کا رویہ اختیار کیے تقریباً ایک مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں لیٹا کرتی تھی۔ بابا اور ڈیڈی میں سے کوئی اسے کھانے کے لیے بلانے آتا تو وہ سب کے ساتھ کھانا کھانے سے انکار کر دیتی۔ ریشما کے ہاتھ اس کے کمرے میں کھانا بھجوا دیا جاتا، وہ کھانا کھا لیتی۔ ان کا خیال تھا چند دنوں تک ناراضگی کا اظہار کرنے کے بعد خود نارمل ہو جائے گی، مگر جب اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو ڈیڈی کی طرح بابا بھی اس بات کو سنجیدگی سے لینے پر مجبور ہو گئے۔ بابا اس کے پاس آئے، ہمیشہ کی طرح پیار بھرے لہجے میں وہ اسے سمجھانے لگے، سوا اس طرح کر کے تم ملیحہ کو تکلیف پہنچا رہی ہو بیٹا، اگر اس کی خوشی کی خاطر تم اس شادی کے لیے راضی ہوئی تھی تو اب اس کی خوشی ہی کے لیے تمہیں اسے ماننا ہوگا۔ تم نے اگر اپنی ماں کے لیے اپنی دل کی مرضی کے خلاف ایک فیصلہ کر ہی لیا تو اب اسے نبھاؤ، ورنہ تمہارا احسان اور نیکی ضائع ہو جائے گی۔ وہ بے حسی سے بیٹھی انہیں بولتا سن رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ مجھے یاد ہے تم نے مجھ سے اس شادی کے لیے انکار کرتے ہوئے کیا کہا تھا، میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں چاہتی تھی۔ تمہارے لیے ارتضا کو شوہر کی حیثیت میں قبول کرنا بہت مشکل ہے، یہ تبدیلی تمہارے لیے ناقابل قبول ہے۔ لیکن صبا تم ارتضا کا بھی تو سوچو، تمہاری طرح اسے بھی تو یہ تبدیلی ڈسٹرب کر رہی ہوگی، اس نے بھی تو کبھی یہ سوچا نہیں ہوگا کہ وہ تم سے شادی کر لے گا۔ وہ اس تبدیلی کو قبول کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ کوشش تو کرو بیٹا، میری بات مان کر دیکھو، کچھ وقت لگے گا لیکن آہستہ آہستہ تم اس تبدیلی کو قبول کر لو گی۔ خود کو یوں سب سے الگ تھلگ نہ رکھو، ارتضا کے ساتھ وقت گزارو، باتیں کرو پہلے کی طرح، وہ تمہارا کزن بھی تو ہے، زندگی اسی کا نام ہے۔ انسان کے دل کو اللہ نے بہت عجیب بنایا ہے، وہ تبدیلیوں کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ تمہارا بہنوئی کبھی تھا مگر اب نہیں ہے، جب بہن ہی نہیں رہی تو وہ رشتہ خود بخود ہی ختم ہو گیا۔ انہوں نے بڑی بدباری اور متناحت سے اسے قائل کرنا چاہا، مگر وہ قائل ہونے کے موڈ میں نہیں تھی، وہ اسی لا تعلقی سے خاموش بیٹھی تھی۔ بابا نے خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ ارتضا بابا اور ڈیڈی کی پریشانی دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈی جو مما کے بعد بہت خاموش اور بجھے ہوئے رہنے لگے تھے، اچانک ہی وہ مایوس نظر آنے لگے۔ وہ بابا اور ڈیڈی کی وجہ سے آفس کے بعد شام کا پورا وقت گھر پر گزارنے لگا تھا، لیکن اس کی یہ تمام کوششیں بھی اس گھر کی خاموشی اور ویرانی کو دور نہیں کر پائی تھی۔ اس گھر سے ماں کیا گئی تھی، اپنے ساتھ ساری رونقیں ہی لے گئی۔ وہاں سے عورت کا وجود، ہر روپ، ہر رشتہ ہی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہاں اداسیوں اور ویرانیوں نے قدم جما لیے تھے۔ معاذ اس کے پاس جاتا تو وہ اسے جھڑک کر بگا دیتی۔ وہ اس کی ڈانٹوں اور جھٹکیوں کے باوجود بھی اس کے پاس جانا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بچہ ماں کی ڈانٹ اور مار پر روتا، اس کی گود میں منہ چھپا کر ہی تو آخر روتا ہے۔ وہ اس کے لیے اس کی ماں کی طرح ہی تھی، صرف ایک سال کی عمر میں اس سے سگی ماں چھین گئی تھی۔ ماں کے بعد वो दूसरा लम्स जो बिल्कुल माँ जैसा ही था वो सबा का ही था। वो उससे खफा थी, इसके रवैये पे इससे बदजन थी, लेकिन फिर भी वो इसके पास जाना चाहता था। इर्तजा ऑफिस के काम से लाहौर और इस्लामाबाद गया हुआ था। वहाँ से दो दिन बाद इसकी वापसी हुई तो उसे बाबा की जुबानी डैडी की तबीयत के बारे में पता चला। उनका ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हुआ था, बाबा इनकी तरफ से फिक्रमंद थे। डॉक्टर के पास जाने और दवा लेने से बजाहिर उनका बीपी नॉर्मल हो गया था, मगर जो परेशानी उन्हें लाहक थी इनके पास इसका ज्यादा देर तक नॉर्मल रहना मुमकिन नहीं था। इर्तजा उनकी परेशानी और बीमारी की वजह समझता था। बेदर्पे गमों ने उन्हें नढाल कर दिया था। खाने के बाद अपने कमरे में जाने से पहले वो रोजाना की तरह सभा के कमरे में गए थे। इर्तजा अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जा रहा था जब इसने डैडी को सभा के कमरे में जाते हुए देखा। वो अपने कमरे में दाखिल हो गया। इसका इरादा था कि डैडी सभा के पास आज से आ जाए, फिर वो इनके पास आ जाएगा। वो इनके साथ हल्की फुल्की गपशप करना चाहता था। बेड पर बैठकर उसने साइड टेबल पर से वो किताब उठा ली जो पिछले 10-12 दिनों से उसके जेरे मुतालिया थी। उसे रात में कुछ न कुछ पढ़कर सोने की आदत थी और ये किताब आजकल उसकी बेड बुक बनी हुई थी। अभी उसने बमुश्किल एक पैराग्राफ ही पढ़ा था कि उसे सभा की आवाज आई। वो जोर से चिल्लाई थी। इर्तजा किताब बेड पर रखते हुए घबरा कर उठा। अगर इसने अबू से कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो उनकी तबीयत फिलहाल ऐसी नहीं है कि वो उसे बर्दाश्त कर सकेंगे। वो तकरीबन भागता हुआ अपने कमरे से निकलकर इसके कमरे में आया था। जिसे देखो मुझे समझाने और नसीहतें करने चला आता है, मेरी समझ में नहीं आता आप लोगों को मुझसे मसला क्या है। वो बहुत चिड़चिड़े अंदाज में बड़ी तलखी से बोल रही थी। डैडी बेड पर बैठे थे और वो सामने दीवार के पास खड़ी थी। डैडी ने उससे क्या कहा होगा वो नहीं जानता था, लेकिन जवाब में जो कुछ वो बोल रही थी इसे वो सुन रहा था। उसे कमरे में आता देखकर वो खुद भी नहीं चौंकी थी। मेरी शादी आप लोगों ने अपनी पसंद की थी, जहां आप लोगों ने कहा मैंने शादी करवा ली। आप लोगों ने मेरे लिए सही शख्स का इंतखाब नहीं किया, ये आप लोगों की गलती है, मेरा इसमें क्या कसूर है। लेकिन इसकी सजा मुझे मिले, इसके लहजे की गुस्ताखी ने इर्तजा को भड़का दिया था। वो तेजी से उसके पास आया और बेख्तियार इसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। तुम तमीज और तहजीब सब भूल चुकी हो, तुम्हें इतना लिहाज नहीं रहा, इस वक्त तुम अपने बाप से मुखातिब हो। वो इतनी जोर से दहाड़ा था कि अपने कमरे में सोने के लिए लेटे हुए बाबा भी चौंक गए थे। वो थप्पड़ लगने पर एकदम खामोश हो गई। अपने बाएं गाल पर हाथ रखे हुए वो सकते के आलम में खड़ी थी। डैडी एकदम उठे, उन्होंने न इर्तजा को कुछ कहा न सभा को। वो खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ गए थे। क्या हुआ शफीक, बाबा बुखलाते हुए कमरे में दाखिल हुए। कुछ नहीं, वो मुख्तसर जवाब देकर कमरे से निकल गए। उन्होंने ना समझ में आने वाले अंदाज में पहले डैडी को देखा और फिर इर्तजा को और सभा को। सभा, अगर डैडी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो उसे वार्निंग देता दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाबा इसकी बात सुनकर उससे पहले कमरे से निकलकर डैडी की कमरे की तरफ भागे। इर्तजा भी उनके पीछे पीछे डैडी के कमरे में आया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन दोनों को फिक्रमंद देखकर यकीन दिलाते हुए वो मुस्कुराते हुए बोले। आप फिक्र क्यों करते हैं डैडी, उसे उसके हाल पर छोड़ दे, आप उसके लिए खुद को बीमार मत करें प्लीज, वो उनके हाथ थाम कर बोला। वो इसकी परेशानी दूर करने के लिए मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। बहुत देर तक वो और बाबा वहीं बैठे उनके साथ बातें करते रहे थे। सभा के बारे में बात करने के अलावा वो लोग बाकी हर मौजू पर बात कर रहे थे। इर्तजा तुम जाओ, रात कॉफी हो गई है, मैं हूँ शफीक के पास, हम दोनों भाई अभी जाकर बहुत सारी बातें करेंगे। बाबा ने घड़ी में 1 बजता देखकर उसे सोने के लिए कहा तो वो सर हिलाते हुए इन दोनों को शबा कह खैर कहकर कमरे से निकल गया। बजाय अपने कमरे में जाने के वो लॉन में आ गया। यूं ही लॉन में बेचैन फिरते उसे 2-2.5 घंटे गुजर गए थे, मगर उसकी बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हें एक जोरदार थप्पड़ मारूं, तो तुम जवाब में क्या करोगी?
आप मुझे कभी मार ही नहीं सकते इर्तजा भाई।
भाई फर्ज कर लो,
मुझे बहुत दुख होगा, मैं रोऊंगी।
ओह मेरे खुदाया, वो अचानक ही अपना सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। उसने सबा को थप्पड़ मारा है, इसके यकीन को बेयकीन किया है। कितना यकीन था उसे इस बात पर कि वो उसे कभी मार नहीं सकता, वो उसे कभी दुख नहीं दे सकता। आज वो उसे दुख दे आया है।
मुझे बहुत दुख होगा, मैं रोऊंगी। क्या वो इस वक्त रो रही होगी?
वो एकदम ही कुर्सी पर से उठ गया और तेजी से रास्ता अबूर करके घर के अंदर आ गया। उसका रुख सबा के कमरे की तरफ था। वो दरवाजा खोलकर अंदर आया तो वो जिस दीवार के साथ इस वक्त खड़ी हुई थी, अब इसी दीवार से कमर टिकाए घुटनों पर सर रखे बैठी थी। वो उसके पास आकर बैठ गया। कारपेट पर वो इसके बिल्कुल करीब बैठा हुआ था।
आई एम सॉरी सबा, उसने इसके सर पर हल्के से हाथ रखा। उसे ये बात याद ही नहीं रही कि सॉरी उसे नहीं सबा को बोलना चाहिए। अपने पिछले तमाम रवैयों पर, इस घर के हर फर्ज से, खास तौर पर डैडी से,
मुझे तुम्हारे साथ इस तरह मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। वो घुटनों पर से उसका सर उठाने की कोशिश कर रहा था। मैंने बहुत गलत हरकत की है, अपनी इस बदतमीजी की मेरे पास कोई वजह नहीं है। वो रो नहीं रही थी, दुख भी इसकी आंखों में पता नहीं था कहाँ है, लेकिन वो इसके बाएं गाल पर सुर्खी को देख रहा था। उसे खुद पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर यूं ही उसे देखते रहने के बाद वो बिल्कुल इसकी तरह दीवार से सर लगाकर उसके बराबर में बैठ गया।
सबा तुम्हें पता है, हमारे माँ बाप हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से सबसे बेहतरीन इनाम होते हैं। तुमने माँ खोई है, बहुत चाहने वाली माँ। क्या तुम इस बात का हौसला रखती हो कि बाप को भी खो दो, बाप जैसा प्यार करने वाले बाबा को खो दो? मुझे अब बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे हैं। अपने इतने प्यारों को जिस तरह आना फाना रुखसत करते हुए देखा है ना सबा, इससे मैं बहुत डर गया हूँ। पहले समन फिर अम्मा, अब मामा, मुझे बहुत डर लगता है सबा। क्या तुम्हें नहीं लगता? हमारे लिए दुआएं करने वाले सब लोग आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हुए चले जा रहे हैं। सबा ये मोहब्बत अनमोल है, हम इन लोगों में से क्यों बने जो वालदैन की कदरों मुजलमत हम इन लोगों जैसे क्यों बने जो वालदैन की कदरों मंजिलत उनकी जिंदगी में नहीं पहचानते, उनके मरने के बाद पहचानते हैं। बाद में पछतावे से क्या हासिल? वालदैन से मोहब्बत करनी है, उनकी इज्जत करनी है, उनकी कदर करनी है तो उनकी जिंदगी में करो। सबा हमारे पास गंवाने के लिए बहुत कुछ अब बचा नहीं है। मुझे डर लगता है कहीं ये बेलोस और अनमोल चाहत हमसे छिन ना जाए, हमारा कोई रवैया ऐसा ना हो जो इस तरह उनका दिल दुखाए कि वो दुनिया ही से मुंह मोड़ ले। वो इसकी तरफ देखते हुए बहुत धीमे लहजे में बोल रहा था। उसकी आवाज इतनी हल्की थी जैसे वो सरगोशी कर रहा हो। जुमले के इख्तिताम पर जो उसने सवालिया अंदाज किया था, इस पर उसने एकदम चौंक कर काट पेट से नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो वही छोटी सी जिद्दी सी सबा थी और वही मिचोर सा इर्तजा दमियान के तमाम साल जैसे कहीं गायब हो गए थे। वो खामोशी से उसकी तरफ देख रही थी। तुम इस रिश्ते को तस्लीम नहीं करती, मैं इसे मानने के लिए तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन सबा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहे? तुम्हारे लिए क्या ये बात काफी नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ? मैं तुम्हारी नापसंदगी से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। क्या तुम बाबा और डैडी की खातिर, इनकी खुशी के लिए, उनकी सेहत और सलामती के लिए इन्हें ये तासुर नहीं दे सकती कि तुमने इस शादी को कबूल कर लिया है? हम क्या ये राज नहीं रख सकते? वो दोबारा उसी हल्की आवाज में बोल रहा था। उसने सबा पर से नजरें हटा ली थी, लेकिन वो इसी की तरफ देख रही थी। सबा, बाबा और डैडी मुझे बहुत अजीज हैं, तुम्हें भी हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया सबा, तो हम क्या करेंगे? उसके चेहरे पर उदासी और फिक्रमंदी छाई हुई थी। खामोशी का एक तवील वक्फा उन दोनों के दरमियान आ गया था। दीवार पे लगा कैलेंडर हवा से हिला था। इसके हिलने पर वो दोनों चौंके थे। घड़ी सुबह के 4:30 बजा रही थी। वो बगैर कुछ कहे इसके पास से उठ गया था। उसने सबा से अपनी किसी बात का जवाब नहीं मांगा था। उससे ये नहीं पूछा था कि वो इसकी बात से इत्तफाक करती है कि नहीं, लेकिन उसे जवाब का इंतजार था और ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं हुआ था। मजीद वीडियोस और स्टोरीज के लिए हमारा चैनल यूनिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।